मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 19 नवंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आपसे विपक्ष बिना लोकतंत्र इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। और दूसरी घटनाओं से पहले मैं एक छोटी सी बात आप सबसे कहना चाहूंगा, और खासकर जो हमारे ऑनलाइन के पेड स्टूडेंट हैं, आप सबको ध्यान होगा कि मैंने कुछ दिनों पहले आप सबसे एक विनती की थी कि इकोनॉमिक्स के अगर आप सबने लेक्चर्स सुन लिए हों तो प्लीज उसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे भेजें। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी इस विनती को स्वीकार करते हुए जरूरी कदम उठाए हैं उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन सबसे जो मुझे प्रतिक्रियाएं मिली हैं बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं हैं। और साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से मुझे, वैसे तो व्यापक रूप से हमारी पूरी एकेडमी की टीम को, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत ही आत्मसंतोष प्रदान करने वाली प्रतिक्रिया रही है। और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं भेजे हैं उनसे मैं फिर से एक बार अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आपने लेक्चर्स सुन लिए हों तो प्लीज आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाने में जरा भी संकोच न करें। देखिए, इसके पीछे एक उद्देश्य है, और उद्देश्य यह है कि मैं आपको जबरदस्ती ही कह लीजिए लिखने के अभ्यास में ढालना चाहता हूं। आप कलम उठाएं और लिखें, लिखने का अभ्यास आपका होना चाहिए। और यहां जो कुछ भी आप लिखेंगे पूरी तरह से अपने मन से ही लिखेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सबके एक एक मेल, एक एक प्रतिक्रियाएं मैं पढ़ता हूं और बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि आप लिख करके भेज देते हैं और वह चीज यूं ही चली जाती है। टाइम बाउंड बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपको अवसर मिलता है प्लीज आप सब मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में फिलहाल लिखकर भेजें, बाद में हम दूसरे विषयों के बारे में भी बातें करेंगे। दोस्तों, जो आज की कुछ जो खबरें हैं थोड़ी सी, कुछ इसमें से कुछ तो काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था वो मैंने चर्चा की थी, आतंकवाद और खासकर यूएनओ में सुधार को लेकर के उन्होंने कल बातें कही थी। लेकिन इस सम्मेलन में जो सबसे एक अच्छी बात रही वो यह कि आतंकवाद विरोधी नीति का अनुमोदन कर दिया गया है कि नहीं, पूरी की पूरी दुनिया में जो आतंकवाद फैल रहा है इसे रोके जाने का उपाय किया जाना चाहिए। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है, और आतंकवाद एक अलग से आपका विषय ही है, इस पर आपकी ठीक ठाक तैयारी होनी चाहिए। देखिए, यहां मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगा, आपके सिलेबस में बाकायदे करंट अफेयर्स है ना, मेंशन किया हुआ है कि आप अपने समय के जो राष्ट्रीय घटनाएं हैं और जो विश्व की घटनाएं हैं उन सबके प्रति सचेत रहें। इसको देखने का दो तरीका है, इसको देखने के पहला तो यह है कि सीधे सीधे करंट अफेयर्स पे कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है तब आपको लगता है कि हाँ ये करंट अफेयर्स से पूछ लिया गया है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि प्रश्न तो करंट अफेयर्स पर सीधे सीधे नहीं पूछा गया है लेकिन उत्तर में आप करंट अफेयर्स को शामिल कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कि आतंकवाद पर अभी जनवरी में जो मेन एग्जामिनेशन होना है उसमें कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आपको चाहिए कि बकायदे ब्रिक्स ने अभी जो अनुमोदन किया है आतंकवाद विरोधी नीतियों के खिलाफ खड़े होने का, आतंकवाद विरोधी नीतियां बनाने का, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होने का, तो बकायदे आप उसमें मेंशन कर दीजिए। इससे जो आपका उत्तर है वो अपडेट हो जाता है और एग्जामिनर को भी लगता है कि नहीं, आप अपने समय से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। देखिए, इसी तरह का एक और मैं आज आपको उदाहरण दूंगा जो आज के अखबारों में बकायदे छपा हुआ भी है, और वह है ब्रिटेन का उदाहरण। ब्रिटेन ने अभी एक 10 सूत्रीय ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन योजना की घोषणा की है। 10 सूत्रीय, 10 पॉइंट हैं, और उसका नाम है ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ग्रीन शब्द को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसका मतलब है कि पर्यावरण के साथ चलने वाली योजना, यानी कि ऐसी योजनाएं जो पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, इस तरह की घोषणाएं की हैं। इसके जो तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला तो यह है कि ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने साफ साफ कह दिया कि 2030 के बाद वहां सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें चलेंगी, डीजल पेट्रोल की कारें नहीं चलेंगी, उससे प्रदूषण कम हो जाएगा। साथ ही साथ वहां के जो शोधकर्ता हैं वो इस काम में लगे हुए हैं कि जो विमान और जो जहाज चलते हैं वो भी अभी पेट्रोल से चलते हैं, डीजल से चलते हैं, तो उसकी जगह पर वो हाइड्रोजन से चलने वाले विमान बनाएं, और उनको सफलता भी मिल गई है। तो जब हाइड्रोजन से विमान चलने लगेंगे तो उससे भी कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। और इसके बाद अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग साइकिल का इस्तेमाल करें। 2025 तक वहां जो थर्मल पावर प्लांट हैं वो लगभग लगभग बंद हो जाएंगे, और सरकार ने यह भी कहा है कि वहां छोटे और बड़े पैमाने पर जो परमाणु संयंत्र हैं वो लगाए जाएंगे और उनके रिएक्टरों को का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। अब इसमें दो बातें, अब देखिए मजेदार बात यह है कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, जो बढ़ते बढ़ते आज पर्यावरण के लिए इतना बड़ा अभिशाप बन गया है, वो इंग्लैंड में ही शुरू हुआ था, और अब जो ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो कहां से शुरू हो रहा है, इंग्लैंड से शुरू हो रहा है। कितनी मजेदार बात है, कितना अच्छा संयोग है। अब आप देखिए कि अब जब पर्यावरण पर कोई प्रश्न पूछा जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप उपाय सुझाइए कि क्या करना चाहिए भारत को, तो आपको नहीं लगता कि अगर आप ब्रिटेन के इस 10 सूत्रीय ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को उसमें मेंशन कर देते हैं भले एक जानकारी के रूप में, तो उसका कितना जबरदस्त सकारात्मक प्रभाव एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा, और इससे यह प्रूफ हो जाएगा कि नहीं नहीं आप बहुत अपने समय के प्रति सतर्क हैं, सचेत हैं, और आप जानते हैं कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स को आप सीधे सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन के रूप में मत लीजिए। करंट अफेयर्स की जो चीजें होती हैं वो आपके मेन एग्जामिनेशन के आंसर राइटिंग में बहुत काम करती हैं। चलिए उदाहरण के तौर पर हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। आज की अखबारों में ये बात छपी है कि आपको मालूम है कि जो हमारा वित्त आयोग है उसने सरकार को अपना 15वां वित्त आयोग ने सौंप दिया है, रिपोर्ट सौंप दी है, और उसके जो अध्यक्ष हैं अभी उन्होंने ये बात बताई कि उस रिपोर्ट में बकायदे ये बात कही गई है कि अभी जो हम स्वास्थ्य पर GDP का 0.95% खर्च कर रहे हैं उसे बढ़ाकर 2.5% किया जाना चाहिए 2024 तक। अब यहां दो बातें हैं। पहली बात कि हम अभी स्वास्थ्य पर कितना खर्च कर रहे हैं अपने GDP का, ये लगातार आपको अखबारों में पढ़ने को मिलता है और अलग अलग डेटा मिलते हैं, कहीं 1.1%, कहीं 1%, कहीं कुछ, लेकिन अब चूंकि फाइनेंस कमीशन ने जो डेटा दिया है 0.95%, तो हम इसे एक सही डेटा मान सकते हैं। तो 0.95% सही डेटा हो गया, आपको इसे नोट कर लेना चाहिए। अब आप देखिए कि तथ्य क्या दिया, 2024 तक इसे बढ़ाकर 2.5% किया जाना चाहिए, एक लेटेस्ट जानकारी हो गई। और बकायदे इसमें इन्होंने कुछ और भी बातें कही हैं इस रिपोर्ट में। उदाहरण के तौर पर उन्होंने यही कहा है कि जो हमें PPP मॉडल है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, उसका भरपूर इस्तेमाल हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब बहुत जरूरत पड़ रही है तभी हम प्राइवेट सेक्टर की मदद ले रहे हैं, जैसे कि कोविड के समय में हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको बकायदे हर स्थिति में इनकी मदद ली जानी चाहिए। उन्होंने और भी कहा कि जो हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, वो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो चिकित्सा सहायक हैं, जो मेडिकल असिस्टेंट हैं, है ना, जो मदद करते हैं, उनके बहुत बड़े प्रशिक्षण केंद्र बन सकते हैं, उनका इस्तेमाल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में किया जाना चाहिए। इससे बकायदे स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार होगा और रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे। इसके साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अब समय आ गया है जबकि चिकित्सा अधिकारियों का एक कैडर बनाया जाना चाहिए, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं उसी पैटर्न पर चिकित्सा, अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा भी तैयार की जानी चाहिए। अब इन्होंने 3-4 रिकमेंडेशन दे दिए। अब मान लीजिए कि आपको प्रश्न पूछ लिया गया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किए जाने की आवश्यकता है, आप बताइए, तो बकायदे आप इसको आधार लेकर के अपनी बात कह सकते हैं। अब फिर से मैं पूछ रहा हूं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे आपका जो उत्तर है वो काफी वजनदार बन जाएगा, काफी प्रभावशाली बन जाएगा, और एग्जामिनर को बिल्कुल लगेगा कि नहीं नहीं आप अपने समय के प्रति बड़े सतर्क हैं। दोस्तों, आखिरी जानकारी एक है कि अब जो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम होने हैं, बर्मिंघम में ये गेम्स खेले जाएंगे ब्रिटेन में, उसमें अब महिला क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। 1998 में पुरुष क्रिकेट को शामिल किया गया था और अब 2022 के गेम में महिला क्रिकेट भी इसमें शामिल कर लिया गया है, तो एक अच्छी खबर है, मुझे लगता है कि आपकी जानकारी में होनी चाहिए। दूसरा, अब मैं आता हूं विपक्ष बिना लोकतंत्र, यानी कि अगर विपक्ष कमजोर हुआ, अप्रभावी हुआ, तो फिर लोकतंत्र क्या होगा। देखिए, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसका मतलब ही होता है कि एक सत्ताधारी पक्ष और उसका विरोध करने वाला, विरोध करने वाला तो नहीं कहना चाहिए, एक तरह से कह लीजिए कि उसकी निगरानी करने वाला विपक्ष, खासकर धीरे धीरे भारत में यह देखा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो कमजोर पड़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे आप देखें कि कितनी कमजोर पड़ती जा रही है। केंद्र में तो उसे विपक्ष की सही तरीके से एक भूमिका भी नहीं मिल पाई है। बिहार के चुनाव में भी उसकी बुरी तरह से हार हुई है। टोटल जो वोट परसेंटेज है वो उसका गिरता चला जा रहा है। और ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने हमारे देश को आजादी दिलाई और इसके बाद भी लंबे वर्ष तक देश का शासन किया। इसको लेकर के सच पूछिए तो जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो बहुत चिंतित हैं। यह आसान बात नहीं है। यहां मैं आपको एक दो नए तथ्य बताना चाहूंगा। बाकी बातें तो आप अखबारों में पढ़ते भी रहते हैं और आज मैं आपको एक आर्टिकल भी प्रोवाइड कर रहा हूं वेद प्रताप वैदिक जी का, जो उन्होंने इसी को बेस बना करके लिखा है, उसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे। तथ्य यह कि आप ब्रिटेन की बात करते हैं, आप अमेरिका की बात करते हैं, ये दोनों बहुत ही अच्छे लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। तो जब भी आप इनके बारे में पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ये धारणा बनती है कि जैसे अभी अमेरिका के चुनाव हुए तो वहां दो सब ही पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। डेफिनेटली ये दो पार्टियां हैं और ये दोनों बहुत मजबूत पार्टियां, बहुत ही सशक्त पार्टियां हैं। इनमें बड़े टक्कर की लड़ाई होती है, लेकिन वहां दूसरी भी बहुत सारी पार्टियां हैं। ये मत समझिएगा कि वहां दूसरी कोई पार्टी नहीं है, केवल दो पार्टी है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये भ्रम रहता है कि वहां केवल दो पार्टी है। अमेरिका में ही लिबरेशन पार्टी है, ग्रीन पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी है। और ब्रिटेन का तो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ब्रिटेन में जब भी आप पढ़ते हैं तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आप पूरा फ्रीडम मूवमेंट अपना पढ़ जाइए तो उसमें आपको कभी लेबर पार्टी पढ़ने को मिलेगा तो कभी कंजर्वेटिव पार्टी पढ़ने को मिलेगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टीज है रजिस्टर्ड 408 है, 408 पार्टियां हैं ब्रिटेन में पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन दो पार्टियां सबसे मजबूत हैं। कभी सत्ता में लेबर पार्टी आती है तो कभी सत्ता में कंजर्वेटिव पार्टी आती है और उसी से लोकतंत्र मजबूत होता है। दोस्तों हम लोगों ने संसदीय लोकतंत्र की पद्धति अपनाई है ब्रिटेन के पैटर्न पर, और संसदीय लोकतंत्र की तो और ज्यादा आवश्यकता है कि जो विपक्ष है वो मजबूत विपक्ष हो। क्योंकि संसदीय लोकतंत्र की स्तर से तो आप परिभाषा दे सकते हैं कि भाई जो सरकार है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन पता लगा कि जिसके प्रति उत्तरदायी है अगर उस संसद में दूसरी पार्टी इतनी कमजोर है कि वो कुछ कर ही नहीं सकती है तो फिर वो उत्तरदायी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तो ठीक तरीके से काम कर रही है लेकिन व्यावहारिक तरीके से वो काम नहीं करेगी। फिर तो आप यूं कह लीजिए कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो कुछ भी करते रहे, उसका कोई विरोध नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ कुछ बात नहीं कही जा रही है, उसका कुछ असर नहीं हो रहा है क्योंकि विपक्ष बहुत कमजोर है। तो दोस्तों इस दृष्टि से आप इस विषय पर ठीक ठाक तैयारी मुझे लगता है कि कर लीजिए। दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और आज इस बात के लिए मैं आप सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत लंबी लिस्ट है नाम लेने की और आप लोगों ने जो मेल लिखे हैं उसने मुझे इस बात के लिए आप कह लीजिए कि सुखद तरीके से बाध्य किया है कि मैं आप सबका नाम लूं, उनमें से मतलब ज्यादातर लोगों का नाम लूं। सैयद अंसारी, संदीप सिंह पंजाब से, विवेक कुमार झुमरी तलैया झारखंड से, अमित कुमार सिंह, प्रतिभा सिंह, रोहित चौधरी भुवाली उत्तराखंड से, अमृत नारायण सतपति, जितेंद्र प्रसाद पटना से, रामबाबू, नेहा सिंह भोजपुर बिहार से, अंकित वर्मा, जय कदम, उत्कर्ष गर्ग गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से और शिवानी शर्मा, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।